हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 49, 50 और 51। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति, गोपेशगोपिकान्ता राधाकान्तो नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानो सूतदेवी, प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च, कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय, जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। इस अध्याय के अंतिम भाग में प्रवेश किया है हमने, और हम आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 49, 50 और 51। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज को युद्ध में मारे जाने वाले समस्त प्राणियों के मरने का अत्यंत ही शोक हो रहा है, बहुत ग्लानि हो रही है। इसके कारण वो अपना शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं, बालद्विज सुहिन्मित्र पितृ रात्रि गुरु द्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बाल द्विज सुजिन्मित्र पितृभ्रातृ गुरु द्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बाल द्विज सुजिन्मित्र पितृभ्रातृ गुरु द्रुहः न मे त्रि न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। आगे कहते हैं, नैनो राज्ञ प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वदो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। उसके बाद कहते हैं श्लोक नंबर 41 में, स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयै नाहं कल्पो व्यपोहितम्। स्त्रियां मद्धत बंधूनां द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयै नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। स्त्रियां मद्धत बन्धूनां द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयै नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। जैसा कि कल हमने श्लोक नंबर 48 में पढ़ा, राजा युधिष्ठिर ने कहा था, हाय मैं सबसे ज्यादा पापी मनुष्य हूँ। राजा कह रहे थे कि इस संसार, इस श्लोक को मैंने कल पढ़ा था, उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक था, सेकंड वर्ड वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है ना, मैं सही उच्चारण नहीं कर पाई थी। एक बार इस श्लोक को वापस से पढ़िए मेरे साथ। अहो में पश्यता ज्ञानम् हृदि रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिति हिणीरतः। अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदि रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मैक्षोहिणी हताः। आप लोगों ने सही पढ़ा था, क्योंकि उच्चारण जो भेजा था ना मैंने, उसमें सही था, लेकिन जब श्लोक था उसमें थोड़ा सा पारक, इसको मैंने पराक बोला था शायद। आज उस कल बोला कि ये जो हत्याएं हुई हैं वो मेरे कारण हुई हैं, क्योंकि मैं देह का सुख चाहता था, मैं राजा बनना चाहता था, तो इसी के कारण ये हत्याएं हुई हैं। और मैं इस पारक यस्य एव देह, यानी कि पराया धन है जो कुत्ते कीड़ों और गिद्धों के खाने की वस्तु है, जो कि मेरे किसी काम नहीं आने वाला, इस देह को राज प्रदान करने के लिए ही मैंने इतने सारे अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया। तो बहुत बहुत इतिहास समझा रहे थे, अलग अलग दृष्टांत दे रहे थे, ब्राह्मण और भगवान समझा रहे थे उनको, लेकिन वो हर उनके जो जो भी मत वो दे रहे थे ना, इतिहास बता रहे थे, शास्त्र बता रहे थे, वेद बता रहे थे, तो उनके हर एक दृष्टांत को और हर एक श्लोक को जो भी वो बता रहे थे उनको काट रहे थे। यानी वो कैसे भी करके ये साबित करना चाहते थे कि मैं अपराधी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप से मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, मैं कभी भी इस पाप का बोझ जो है वो इतना बड़ा है कि मैं कभी भी उससे मुक्त हो नहीं सकता, चाहे मैं कितने ही यज्ञ करूं, कितने ही दान दूं, कितना ही कुछ भी करूं, लेकिन मुझसे मैं बहुत ज्यादा दूषित हो गया, मेरा मन अभी मैं दुरात्मा हो गया। अपने आप को वो माफ नहीं कर पा रहे थे, हृदय से उनको ज्ञानी हो रही थी। तो कहने लगे कि हाँ आप बोलते हो कि इतिहास में कोई पहला युद्ध थोड़े है, पहले भी तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं। हाँ मैं मानता हूँ, वो बात को मानते थे। फिर ऐसे बोलते थे कि इतिहास में करोड़ों युद्ध हो सकते हैं, लेकिन ऐसा युद्ध आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस युद्ध में तो मेरे अपने सगे संबंधी, मेरे अपने मित्र, मेरे अपने पिता, पितामह, गुरु और सबसे बड़ी बात छोटे छोटे बच्चे, हमारा अभिमन्यु, मेरे अपने 5 बच्चे, मेरे दुर्योधन के इतने सारे बच्चे जो मुझे ताया जी कहते थे, इतने सारे बच्चों की हत्या हुई है और वो भी दूसरे किसी की नहीं हुई है, हमारे अपने खानदान के सारे लोग मरे हैं। देखो आज तक इतिहास में इतना घोर अपराध वाला युद्ध कभी नहीं हुआ होगा। अभी युद्ध कैसा था ये तो समझो, मैंने अपने ही खाने के लिए अपने ही लोगों का गला काटा है। अब देखो यदि कोई जीव खाने के लिए किसी जानवर को भी काटता है ना, तो उससे भी माफी नहीं मिलती है। अगर कोई जानवर का गोश्त भी खाता है तो उसको भी उसका प्रतिफल मिलता है, उसे भी वापस से कटना पड़ता है। मैंने अपने भोजन के लिए, अपने राजभोग के लिए, मैंने इतने सारे बच्चों की, वो भी अपने घर के बच्चे, इतने सारे पिता माँ, मेरे रिश्तेदार में, और सबको याद कर करके अपने जितने भी संबंधी और जो युद्ध में मारे गए थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य और उनके पितामह भीष्म और उनके मामा शल्य जो उनके मामा थे नकुल और सहदेव के, और हर एक धृष्टद्युम्न और द्रौपद और अपने बच्चों को स्पेशल याद करते थे, उनको बहुत याद आ, बहुत दिल से ज्ञानी होती थी कि मैंने अपने सुख के लिए अपनों को ही अपनों का वध कर दिया, अपनों की बलि चढ़ा दी मैंने। इसलिए वो कहते हैं बाल त्रिज सुहिन मित्र, बाल यानी बच्चों को, द्विज मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं उनको, सुहृद मतलब शुभ चिंतक जैसे शल्य इत्यादि, मित्र यानी कि उनके जो मित्र दूसरे थे सात्विक इत्यादि, और सात्विक तो थे बाकी दूसरे जो, जाहिर बात है उनका युद्ध हुआ था तो कितने सारे मित्रों की भी मृत्यु हुई थी, और भातृ लिखा है यहाँ पर, पिता चाचा ता पितृ यानी जो मेरे पिता के जो कुल थे उनके सारे खानदान, और भ्रातृ लिखकर उनको अपने करण याद आ रहे थे क्योंकि करण उनके भाई थे तो वो भी उनको याद आ रहे थे, और गुरुजन यानी कि उनके गुरु जो द्रोणाचार्य थे वो, और द्रोहा यानी मारने वाला, मैंने इन सबको मारा, बच्चों का मारा, अपने शुभचिंतकों को मरवाया, अपने मित्रों को, अपने पिता जैसे चाचा तावों को मरवाया, अपने भाइयों भाई को भी मरवा दिया, अपने गुरु को भी मरवाया, और न मे स्यान मेरा यान, न मे स्यान कभी भी नहीं मेरा, स्यान मतलब होगा मेरा यान यानी नरक से, मैं नरक से मोक्ष मैं नरक जाऊंगा और कभी भी वहां से मुझे नहीं निकाला जाएगा, करोड़ों करोड़ जन्मों तक मुझे नरक में डाला जाएगा। ही अपी यानी निश्चय ही जाऊंगा, मैंने इतना अपराध किया है कि मैं निश्चय ही नरक में जाऊंगा। वर्षा वर्षा युता युत, वर्ष कहते हैं साल को, आयुता मतलब लाखों, और युत मतलब जोड़े जाने पर, लाखों सालों को मल्टीप्लाई करते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ, बहुत सारे साल जो है लाखों लाखों साल, अगर ऐसी तब तक भी मुझे नरक से नहीं निकाला जाएगा। मैंने इतनी हत्याएं की हैं, छोटे छोटे बच्चों को मरवाया, अपने पिताओं को, अपने गुरुओं को, अपने सगे सब, दूसरे भी लोग युद्ध करते हैं मैं मानता हूँ, दूसरे लोग जब भी युद्ध करते हैं तो किसी दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करते हैं, अपने खानदानों को आज तक किसी ने भी नहीं मरवाया, और मैं तो कितना दुरात्मा हूँ, मैंने तो क्योंकि वो दिख रहा था ना, अब घर में शोक है, राज राज उसको मिल गया, लेकिन द्रौपदी उधर कोने में बैठकर अपने बच्चों के लिए रो रही है, उधर उत्तरा जो बिल्कुल छोटी बच्ची थी, अभी उसकी शादी हुई थी, गर्भवती थी, वो रो रही थी अभिमन्यु को याद करके, और कुंती महारानी रो रही थी करण को याद करके। तो दिख रहा था ना कि ये सारा अपराध मेरे कारण हुआ है, तो दुखी है सब मेरे कारण, क्योंकि मेरे अपने संबंधी, किसी और राजा का अगर मैंने वध करवाया होता तो वे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ही खानदान को मैंने मरवाया। अनुवाद, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा, ताऊ, शिक्षकों तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध पाप पूर्ण माना जाता है, मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी होते हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नर संहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। तो कृष्ण ने इत्यादि दूसरे ब्राह्मणों ने उन्हें समझाया कि भले ही वो हमारे संबंधी थे, लेकिन जाहिर सी बात है हमने तो नहीं बोला हम युद्ध कर रहे हैं। अब वो सज संवर के हथियार लेकर युद्ध करने के लिए आएंगे, हमारे लिए हमारे सामने हथियार उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम कायरों की तरह बैठे थोड़ी रहेंगे। अब युद्ध की चुनौती यदि कोई देता है तो युद्ध करना पड़ेगा, हर हमेशा ऐसा होता है। अब ये थोड़ी देखा जाता है युद्ध करने के टाइम पर कि सामने हमारा गुरु है या पिता है या पितामह, युद्ध करने के लिए आया है, संधि की कोशिश तो की हमने, लेकिन फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं तो क्या हम कायरों की तरह हाथों में चूड़ियां पहन लेंगे, युद्ध तो करेंगे। फिर राजा युधिष्ठिर बोलते हैं, नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुर् धर्मयुद्धे विदो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञः, नैन मतलब पाप नहीं है, राज्ञ मतलब राजा का, इनके ये आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि यदि कोई राजा किसी हथियार कोई हथियार लेकर उनसे युद्ध करने के लिए आता है तो अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए यदि वो राजा युद्ध करता है, क्योंकि अब कोई और आक्रमण कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसने आक्रमण क्यों किया, जाहिर सी बात है हमारे राज्य पर अधिकार जमाने के लिए। तो यदि कोई राजा उस आक्रमण का जवाब देता है जो कि प्रजा रक्षा के लिए होता है, तो फिर वो धर्म युद्धे वदो द्विषाम्, धर्म युद्धे प्रजाभर्तुर, यानी प्रजा को पालने वाला जो व्यक्ति होता है, प्रजाभर्तुर भी राजा को बोलते हैं, और राज्ञ मतलब वो भी राजा, यानी कि एक ऐसा राजा जो प्रजा को पालने वाला होता है, धर्म युद्धे सही धर्म के लिए यदि वो युद्ध करता है, वदो द्विषाम संहार शत्रुओं का करता है, तो न एनम, तो फिर वो पाप नहीं है। मैं भी मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजा यदि वो लोग हथियार लेकर आएंगे और मेरी प्रजा के को मारने का विचार करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं युद्ध करूंगा, लेकिन इतनी में न तो बोधाया, आपके इस तर्क से मुझे बात समझ मुझे नहीं आता, ये मेरे लिए सही नहीं है। दूसरे राजा लोग अगर युद्ध करते हैं तो उनको भले अपराध नहीं लगता है, लेकिन नमी इति में न तो बोधाया, आपके इस तर्क से मैं नहीं बच सकता, क्योंकि कल्पते शासनम वचः, कल्पते मतलब संतोष के लिए, कल्पते बोधाय मतलब मेरे संतोष के लिए आपके ये वर्ड्स काफी नहीं है, कल्पते वे शासन चलाने के लिए हैं, शासनम आदेश यानी वचः शब्दों का वो बता रहे हैं कि ठीक है अगर कोई राजा, कोई अधर्मी राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करता है, तो एक धर्मात्मा राजा जो अपनी प्रजा का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसको उसका ये अधिकार है कि वो युद्ध करे, वध करे सबका। लेकिन वो कब कब उसके लिए ये वचन शास्त्र में आता है? जब वो अपनी प्रजा का पालन करने के लिए शस्त्र उठाता है। लेकिन इति में न तो बोधाय, आपके ये शब्द मुझे कैसे शांत कर सकते हैं? मैं कोई प्रजा को पालन करने के लिए थोड़ी युद्ध कर रहा था, मैं तो सिंहासन पाने के लिए, अपने को राजा बनाने के लिए युद्ध कर रहा था। मेरा एकमात्र जो प्रजा थी उसका भरण तो दुर्योधन कर रहा था। प्रजा को दुर्योधन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दुर्योधन को प्रॉब्लम मुझे थी। दुर्योधन के होते हुए मुझे राज्य नहीं मिल रहा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने इस देह को राज प्राप्त कराने के लिए ही ये युद्ध किया था। प्रजा का पालन तो दुर्योधन बहुत अच्छी तरह, और पता है क्या, वास्तव में दुर्योधन बहुत अच्छा प्रजा का पालन कर रहा था। दुर्योधन भले अधर्मी था, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कुशल राजनीति था, क्योंकि वो ऐसे कार्य करता था कि मतलब षड्यंत्र बनाना उसे आते थे। मतलब किसी को भी दुखी नहीं करता था, मौका नहीं देता था कि मतलब जो प्रजा थी उसको कभी भी अपने खिलाफ होने नहीं देता था। इतना वो हस्तिनापुर का जो राज्य था वो इतना संपन्न था कि किसी चीज की कमी नहीं थी, और प्रजा को हर एक वस्तु जो भी उनकी आवश्यकता की होती थी वो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती थी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रजावासी दुखी थे उनसे। दुर्योधन बहुत इतना सम्मान करता था। अभी देखो, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब वहां पर रह रहे थे, इसका कुछ तो कारण होगा ना कि कृपाचार्य वो वरना छोड़ के चले जाते। लेकिन इतना मीठा बोलता था, इतना ज्यादा उनका आदर अंदर अंदर से, भले उनके लिए कैसा भी। अब क्योंकि हमने क्या सुना है, दुर्योधन अत्याचारी है, ये तो हमारे माइंड में दुर्योधन की एक ऐसी संकल्पना है, लेकिन वास्तव में दुर्योधन जो है वो उसने इतना अच्छा राज्य किया था, इसका कैसे सबूत दिया जाए? कि जब युद्ध हो रहा था तब भी उसके पास 11 अक्षौणी सेना थी, यानी वो सब उसकी खातिर मरने के लिए आए थे, वरना नहीं आते ना अगर उसको। लेकिन सारी प्रजा को उसने इतने अच्छे से पाला हुआ था, इतने अच्छे से वो उसका देखभाल करता था प्रजा का, प्रजा को उससे कोई शिकायत नहीं थी। और दुर्योधन इतना राजनीतिक था, पता है जो नकुल और सहदेव के मामा शल्य है ना, वो जब आ रहे थे उधर से, जब उन्हें पता चला कि युद्ध हो रहा है, तो वहां से निकले थे अपने गांव से, अपने मतलब जहां पे राज्य था ना, वहां से निकले थे। तो दुर्योधन ने हर जगह पर उसका इतना स्वागत किया कि वो हैरान हो गए स्वागत से, और उसने अपना निश्चय बदल दिया कि मैं दुर्योधन की ओर से लड़ूंगा। अब वो क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय का क्या होता है कि जब युद्ध हो तो उसे लड़ना है, युद्ध करना है, लेकिन उसको ये लग ही नहीं रहा था। दुर्योधन का आचरण देखकर, उसका स्वभाव देखकर वो इस बात को जज ही नहीं कर पाते थे कि दुर्योधन अधर्मी है। मतलब उसका बात, मतलब दुर्योधन उसे, अब हम क्या समझते हैं, जो पांडव पक्ष की बातें हैं ना वो हमें समझ में आती है, क्योंकि हम शुद्ध भक्तों से समझते हैं। लेकिन दुर्योधन की बात, दुर्योधन भी तो कुछ बात करता होगा ना अपने बारे में। जाहिर सी बात है, जुआ खेलने के लिए आए थे और हार गए, तो फिर जाहिर सी बात है उनको जाना पड़ेगा ना, और फिर गए वनवास में, और जब वनवास में गए और हमने पकड़ लिया, फिर क्यों हमें वापस से ना, हमसे राज्य मांग रहे हैं, वापस जाए ना। मतलब इस तरह से वो उनको बताता था कि सब लोग कन्विंस हो जाते थे। तो यहाँ पर राजा युधिष्ठिर बोल रहे हैं, सॉरी युधिष्ठिर राजा बोल रहे हैं कि अगर प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध किया जाता है तो सही है, इति में न तो बोधाय, अगर आपके ये शब्द मुझे शांति नहीं दे रहे हैं, कल्पन्ते शासनम वचः, ये आदेश मेरे जैसे राजा के लिए नहीं है, जो कि सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपने आप को राज्य प्राप्त कराने के लिए इतनी सारी सेनाओं का वध करता है। अनुवाद, हे राजा, अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है,
उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि शासन तो दुर्योधन द्वारा बिना किसी क्षति के चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन को के हाथों से राज्य छीनने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संसार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ, यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु आत्मोन्नति के लिए हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए अपने को दोषी समझा। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज का मन कितना करुणामय है, कितनी विनम्रता है। भले ही वो शास्त्रों के आदेश को काट रहे हैं, लेकिन एक भक्त का जो रियल स्वभाव है ना, वो दिखा रहे हैं। एक भक्त जो है उसको इस कसौटी पे पूरा उतरना होता है कि वो अपने छोटे से छोटे अपराध को भी बहुत बड़ा समझता है। और यहाँ पर हाँ, अभी देखो इस संसार में क्या होता है, ये यहाँ पर भगवान उनको समझा रहे हैं, इतने सारे भ्रमर उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे नहीं, आप भले जो भी बोलो, मगर मैंने इतना अपराध किया है कि करोड़ों साल तक मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इससे बड़ा अपराध तो कोई होता ही नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आप भले कुछ भी बताओ, परंतु मुझे इससे शांति नहीं आएगी। वास्तव में अपराध हुआ ही नहीं था, एक व्यक्ति पर भी अपराध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया था इस युद्ध के साथ, लेकिन फिर भी वो मान रहे थे। आज क्या हो कि यदि कोई अपराध करता है, भले कितना ही बड़ा अपराध होगा, तो यदि कोई दो बहुत ही कंडम मूर्ख व्यक्ति भी आके समझाएंगे कि नहीं नहीं आपने थोड़ी अपराध किया है, ये थोड़ी उन्होंने ऐसा किया था तो आपको ऐसा करना पड़ा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, वो फौरन उसी टाइम पर समझ जाएगा बात कि हाँ हाँ मैंने थोड़ी कोई अपराध किया है। यू आर राइट, आई हैव नॉट डन ऑफेंसेस, मैंने तो कोई भी अपराध नहीं किया है, जाहिर सी बात है। अब लेकिन जो भक्त होता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उससे दूसरों में दोष नहीं दिखता है, उससे अपने में बहुत ज्यादा दोष, वो थोड़ा सा भी दोष होगा तो बहुत ज्यादा लगेगा कि वाकई में मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं कितना अपराधी हूँ। और जैसे एक भक्त होगा ना, उसकी अगर एक दिन भी मंगल आरती छूटेगी ना, तो वो इतना रोना आ रहा होगा उसको, और वो अपने आप से पछता रहा होगा, अपने आप से घिन आ रही होगी उसको, ऐसा लगेगा कि देखो मैं कितना अपराधी हूँ, मेरा पूरा जीवन सिर्फ विषयी वस्तुओं को आनंद भोगने को, ये तामसिक गुणों में गया है मेरा, मेरा पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ हो गया, मैं भगवान की सेवा भी नहीं कर पाता हूँ, मैं तो भगवान की अच्छी सेवा नहीं करता हूँ, भगवान के लिए उठता नहीं हूँ, भगवान की सेवा अच्छी नहीं करता हूँ, शास्त्र अध्ययन नहीं करता हूँ, जब भी मेरा अच्छा नहीं होता है। भक्त को अपने सारे अपराध उसी अपराध में दिख रहे होंगे, इतना अपने आप को मतलब अपराधी महसूस कर रहा होगा, और दूसरों में अपराध होंगे भी ना वो भी नहीं दिखेगा, बोलेंगे वो कितना अच्छा कर रहे हैं, सबसे हो रही भक्ति, एक मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर कोई अभक्त होगा ना, वो अगर कभी भी नहीं आएगा ना मंगल आरती में, तो हम उससे पूछेंगे कि आप मंगल आरती पे नहीं आते हो, तो वो फौरन ऐसी सफाई देगा कि हाँ वो असल में क्या है कि मेरा शरीर ऐसा है कि ना मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, फिर कोई और दूसरी सेवा नहीं होती है, सारी सेवाएं मेरी मिस हो जाती हैं। मेरे जैसा कोई पापी अपराधी होगा ना, वो इतनी आपको सफाई के साथ बताएगा ना कि मेरी मंगला आरती क्यों मिस हो रही है, कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये कितना, बाकी सेवाएं तो इसकी कितनी अच्छी हो रही, खाली मंगला आरती तो मतलब मिस हो रही है, इसका मतलब है अपराध है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि अपना अपराध दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से एक भर भी अपराध नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अपराध हुआ है। आप लोग चाहे जो भी बोलो, भगवान कह रहे हैं, त्रिलोकी के नाथ कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कि नहीं आप अपराधी नहीं हो, लेकिन वो बोल रहे नहीं मैंने तो बहुत बड़ा क्यों ऐसा बोल रहे थे जानते हैं? क्योंकि वो देख रहे थे, उनके अंदर इतनी करुणा थी। अब जैसे जितने भी जीव मरे थे वो सब हस्तिनापुर, जितने भी मरे थे ना सेनापति और महारथी, वो सब हस्तिनापुर के थे। अब हस्तिनापुर के हर घर में मातम था, हर एक घर में कोई ना कोई मरा था कुछ, है ना, मतलब किसी के वृद्ध जो लोग होते थे, जैसे जवान सारे मर गए थे, अब कुछ बूढ़े थे वो परेशान उनके बदले में, तो वो रो रहे थे। बूढ़ी माताएं छाती पीट पीट कर इतने विलाप करती थी, किसी के दो बच्चे, किसी के चार बच्चे, किसी के छोटे बच्चे जिनकी अभी जिनका अभी विवाह नहीं हुआ था, तो सब दुखी थे। तो वो ये कह रहे, उनको ऐसा कह रहे थे कि मैंने इतना अपराध करवाया, अब मैं सिंहासन पर तो नहीं बैठूंगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं सिंहासन पर बैठ के इन सबकी शवों पर अपना चरण रख के मैं सिंहासन पर बैठूंगा क्या? और अगर मैं बैठूंगा तो मुझसे ज्यादा अपराधी कोई नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, मेरे इस दोष का निवारण तो होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे अगर करोड़ों साल तक नरक में भेजा जाएगा ना, फिर भी नहीं होगा, लेकिन अभी मैं फिर भी सिंहासन पर बैठकर राज्य तो नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। साफ इनकार कर दिया कि मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, तपस्या से भी निवारण नहीं होगा, लेकिन मैं कम से कम भोगूं तो नहीं। और इतनी सारी स्त्रियों की यहाँ पर सदाएं आती थी ना, उसके महल तक आती थी आवाजें, रोज रोना रोज रोना, इतना रोते थे सब। जाहिर सी बात है, इतना नरसंहार हुआ था, जैसे हमने कल पढ़ा कि कितनी अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना में कितने ज्यादा, 21,800 रथी होते, 21,870 हाथी होते, 1,90,560 पैदल होते हैं, और 64,600 घुड़सवार होते हैं, और ऐसे 11 अक्षौणी सेनाएं का नाश हुआ था। आप सोच सकते हो एक साथ इतनी ज्यादा हत्या हुई होगी, हर घर के कितने व्यक्ति, हर एक के कितने संबंधी, और इतने सारे लोग एक साथ जब विलाप कर रहे होंगे, तो जिसके कारण ये हुआ है उसको कैसा लग रहा होगा, वो क्या खुश होकर राजा बन सकेगा, और वो भी इतना धर्मात्मा। परंतु यहाँ पर अपराध का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये अपराध नहीं था, ये तो धर्म युद्ध और कृष्ण की इच्छा से हुआ था। जिस कार्य में कृष्ण की इच्छा होती है वो अपराध कभी हो ही नहीं सकता। अब जैसे शिव जी महाप्रलय करवाते हैं, महाप्रलय में संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है, तो क्या उन्हें अपराध लगता है? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से होता है, जो कार्य भगवान की इच्छा से होता है उसमें अपराध का लेश मात्र भी नहीं होता है। लेकिन ये भक्त की विनम्रता होती है कि उसे अपने गुण में भी वो दोष ढूंढ के निकालता है, और ये कसौटी है, ये युधिष्ठिर महाराज एक कसौटी है जिस पर हमें अपने आप को परखना चाहिए। वास्तव में एक मीटर होता है, जिस दिन आपके मन में ये विचार आ जाए कि मैं अपने कोई भी अपराधी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल धर्मात्मा हूँ, उसी दिन आप अपने पद से नीचे गिर जाते हो। हमें हमेशा विनम्र भाव से ये सोचना चाहिए कि मैं अपराधी हूँ, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं। और आगे कहते हैं कि ठीक है, आप समझते हो कि ठीक है इतने सारे जो राजा हैं उनका वध हुआ तो सही है, लेकिन स्त्रियों का, स्त्रियों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? स्त्रियां जो हैं वो इतना सारा रो रही हैं, उनके रोने का कारण तो मैं हूं ना। और आगे कहते हैं, स्त्री नाम मत्थत बंधु नाम द्रोहो यो सावी होथित। स्त्री नाम का मतलब होता है स्त्रियों के मत बंधु, हत बंधु यानी मेरे मित्र थे, जैसे हमारे चाहने वाले लोग थे उन सबका, और द्रोहो शत्रुता यह जो, असो मतलब ये सब, यो हो सावी होथत। सुनो, भगवान ने उन्हें कहा कि यदि आप अच्छा कार्य करो, अब अच्छा राज्य करो और उसमें यज्ञ करो इत्यादि करो, तो आपका अपराध मिट जाएगा। भौतिक कार्य करो, मतलब ऐसे कार्य करो ना अच्छे, तो आपके अपराध खत्म हो जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ करो तो उससे भी आपके, आपका ही अपराध हट जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं, स्त्रियाम अथत बंधु ना द्रोहो यो सावी होतित, कि इतने सारे मैंने पाप एकत्रित किए हैं ना, स्त्रियों के सारे संबंधी, उनकी किस इच्छा, कोई विधवा हो गई है तो कोई कोई ना बांझ हो गई है इन सबके। जब मैं मुख देखता हूँ, रोते हुए विलाप सुनता हूँ, तो मुझे क्या लगता है, कर्म भीर कृह में दीना कल्पो व्योपाहितो हित। यानी कि फिर चाहे मैं कितने ही कल्याणकारी कार्य करूं, इससे कभी भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अनुवाद, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस देह इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, गृह में यदि वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना, कभी कभी पाप कर्म के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय ना चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं न कहीं पाप हो जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल जाता है। यानी कि ऐसे वेदों में बताए जाते हैं कि यदि भौतिक कल्याण के लिए आप कोई कार्य करते हो, उससे अगर अपराध हुआ है, तो आप यदि अश्वमेध यज्ञ करते हो तो ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था। युधिष्ठिर महाराज ने तो 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यानी हमने पढ़ा था कि 3 अश्वमेध यज्ञ करने से उन्हें इंद्र की कीर्ति हो गई थी। युधिष्ठिर महाराज तो उत्तम श्लोक कीर्तया है, उनकी कीर्ति, वो धर्म राज कहलाते हैं। वो तो अधर्म कर नहीं सकते, अपराध उनके पास आ ही नहीं सकता है। उन्होंने यज्ञ किए थे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि भले ही, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे महान पाप से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति भाई पिता पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शुरुआत। शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्कर चलता रहता है, जिसका शासन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता है। कर्म का विधान है ऐसा ही है। यह एक ही साथ क्रिया और फिर उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे हम जो जो कार्य करते हैं उसका प्रतिक्रिया मिलता है। अब इतने हजारों लोगों का मैंने वध किया है, तो मैं कैसे करोड़ों जन्मों तक भी मैं नरक से बाहर नहीं निकलूंगा। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ दी जाती है। श्रीमद भगवद गीता 1:27-28 में इसका उपचार समझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कारण ही हुआ था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है। और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं। अतएव पांडवों को किसी तरह से पाप छू भी नहीं गया, क्योंकि वे भगवान के आदेशवाहक थे। जो अन्य लोग निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कर्म का सिद्धांत तब तक आता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यज्ञार्थात कर्मान्यत्र लोको यम कर्म बंधन। अगर भगवान की खुशी के लिए कार्य करोगे तो वो आपको बंधन में नहीं बांधेगा, और अगर आप भगवान की खुशी के लिए कार्य नहीं करोगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करोगे, तो ही आप बंधन में बंधोगे। अब युधिष्ठिर महाराज ने पूरा का पूरा, ये युद्ध हुआ ही कृष्ण की इच्छा से था, तो फिर इसमें तो कर्म बंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज दुखी थे बहुत। अब देखते हैं आगे भगवान युधिष्ठिर महाराज को कैसे समझाते हैं। फिर भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा तो यही है कि वो भीष्म पितामह के समझाने से समझे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।